प्रस्तुत है पृथ्वी सेन और रुद्रधीर अमित कुमार की आवाजों में। मध्य की जनपद कल्याणी कला के अधिष्ठात्री नागश्री देवी मल्लिका बहुत समय से निरुत्साह और विरक्त थी और सगल का सब्रह्म समाज कला के रस से वंचित। कला की उस पीठ में पर्व और तिथि के उपलक्ष्य में होने वाला कला का अनुष्ठान केवल रीति की रक्षा मात्र रह गया था, प्राण और उत्साह का उसमें अभाव था। सर पूर्णिमा के अवसर पर देवी के प्रसाद में विशाल समारोह के समाचार से सगल का समाज सजल उल्लासित और उत्साहित हो उठा। उस समय समाज के लिए नगर के अभिजात वर्ग ने गण परिषद और सदस्य श्रेष्ठी जेठा कुलनाड़ी और नगर की सम्मानित नर्तकियां सभी आमंत्रित थे। निडब्र आकाश में फैली उज्ज्वल चंद्र की प्रखर परंतु शीतल किरणों में सब अस्तरणों सुबिस्तरों और उपधानों पर समाज का आयोजन हुआ। सब और श्वेत पुष्पों श्वेत चंबर श्वेत व्यंजन अर्धगौरपान के लिए भी श्वेत स्फटिक और रजत के पात्र उपस्थित थे। दास और दासी भी श्वेत वस्त्रों में थे। स्वयं मल्लिका उसके शिष्याएं समाजी अर्थात वादक और अन्य संवादिक आमंत्रित नर्तकियां भी शुभ्र उत्तरीय कंचुक और साटक धारण किए थी। श्वेत पुष्पण मुक्ता के आभूषणों से ही उन्होंने श्रृंगार भी किया था। बहुत समय पश्चात ऐसे समाज में एकत्र होने का अवसर पाकर अतिथि अत्यंत पुलकित थे। अपने इष्ट मित्रों सखाओं की गोष्ठी में अतिथियों ने आसन ग्रहण किए। आचार्य रुद्रधीर सामंत कर्तवीर महापंडित विष्णु शर्मा सार्थवा बलभद्र और धर्मजीत महासामंत सर्वार्थ को घेर कर एक और बैठे थे। आर्य सकेद्र इंद्रदीप विनय शर्मा और वसुधीर आदि ने अनेक उनके समय के कुछ अंतर से स्थान ग्रहण किए थे। महाश्रेष्ठ प्रेस सामंत ओकरिस सामंत मार्थ पंडित इड़किद सामंत वर्धक और गोपाल दूसरी ओर थे। सेनापति प्रदूषण ने अपने मित्रों और शाखा वर्ग सहित श्री और सुकुल नानिया भी अपने अपने परिजनों के समय अपनी सखियों की गोष्ठी में बैठी थी। गण परिषद की नवीन सदस्यता पाए अपने व्यवसायी आमंत्रित श्रेष्ठियों और अंतरायण के जेठों सहित एक और बैठे थे। देवी मल्लिका ने इस वृद्धावस्था में कला की सेवा में असमर्थ हो जाने पर भी अपने निमंत्रण का आदर करने के लिए अतिथियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। शरीर असमर्थ और शिथिल हो जाने पर भी देवी ने समाज के आरंभ में मांगलिक नृत्य में भाग लिया। अतिथियों के सत्कार के लिए उन्होंने दासों को विशेष मूल्यवान कपिसायणी कंधारी मांगली द्राक्षी आदि सुराएं प्रस्तुत प्रचुर मात्रा में उपस्थित कराने की आज्ञा थी। चंद्रमा के मध्याकाश में पहुंच जाने पर नर्तकियों ने नृत्य देवार्चना के संकेत और सूक्ष्म भावों के मूर्तों के वासना के इंगित और निमंत्रण पर उतर आए। अतिथि सुरा के चशुओं का चोषण न कर घूंट भरने और उन्मुख में उरेलने लगे। नृत्य और विधि की वाद्य की ताल पर अतिथियों के अंगों का स्फुटन आरंभ होने देखकर मल्लिका के ने कुलजन और कुलनाड़ियों से रास नृत्य का प्रस्ताव किया। मल्लिका के संकेत से नर्तकी कुसुम सेना नृत्य में पृथ्वीसेन की भुजा का आश्रय लेने के लिए आगे बढ़ी। शेष अभ्यागत भी अपने अपने प्रत्याय की नर्तकियों अथवा कुल नाड़ियों के संपर्क में नृत्य के लिए आगे बढ़े। समाजियों ने वीणाओं वंशियों और मृदंगों तथा मुंजरों से रास नृत्य के स्वर आरंभ किए। समाज स्थल ने एक चक्र कड़ूप धारण कर लिया। नृत्य का प्रथम चक्र समाप्त होने पर कौशल से नृत्य करने वाले नर और नाड़ियों की प्रशंसा होने लगी। मल्लिका ने पृथ्वीसेन की सूक्ष्मता और पद लाघव की विशेष स्तुति की। नाड़ियों ने नर्तकी कुसुम सेना और वसुमित्रा के अतिरिक्त यवन सामंत मार्थ की पत्नी ज्वाला और आचार्य रुद्रधीर के अनुजा आर्य इंद्रदीप की विशेष की पत्नी अमृता ने विशेष श्लाघा पाई। आर्य अमृता ने दिव्या आदि कुल कन्याओं की संगीत संगति में देवी मल्लिका से नृत्य की शिक्षा पाई थी। उन्हें नृत्य में विशेष रास भी था। नृत्य के श्रम से तीर्थार्थ होकर सामान्य पुनः अनेक चषक पान किए। ओठों पर लगे सुरापात्र की ओर से सिरों के नेत्रों के संकेत का निमंत्रण पाकर उसकी ओर बढ़कर सामंत ओकरिस के पुत्र महेंद्र ने कहा, भद्रदेन देवी मल्लिका कृपा से यह अवसर चिरकाल पश्चात आया। आज नृत्य के सुख में हम आत्मविस्मृत हो जाए हैं। इस प्रस्ताव का उत्तर आर्य इंद्रदीप ने दिया, निश्चय मित्र शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब एक चंद्रमा आकाश में दिखाई दे पान और नृत्य में शिथिल होने वाला युवक का पुरुष है। वादकों के नवीन लय उठाने पर नृत्य का चक्र पुनः आरंभ हुआ। देवी ज्वाला पृथ्वी सेन के साथ नृत्य करने के लिए आगे बढ़ी। चक्र पहले चक्र से भी अधिक वेगवान हुआ। नृत्य की समाप्ति पर देवी मल्लिका की दासियों ने स्वच्छ सुगंधित प्रोक्षासन वस्त्र अभ्यागतों के मस्तक और गिरवा का श्वेत पोष कर सुगंध छिड़की और हंसपंख के श्वेत व्यंजनों से बतास करने लगी। पुनः सुरा पूर्ण चषक अतिथियों के हाथ में आ गए। आर्य सदृक ने अपना चषक रिक्त कर दासी को थमाते हुए कहा, मित्रों क्या दुष्प्राय अवसर अपेक्षा और शैथिल्य में खोने योग्य है? ऐसे पर्व का दिन वर्ष में एक बार ही आता है। वृद्ध पंडित इर्किद ने अपना चषक ओठों से हटाकर विनोद से सहयोग दिया, और यौवन भी जीवन में एक ही बार आता है। उसकी बात का केवल सम्मंत ओकृष्ट और महाश्रेष्ठ प्रेस ने सुना और वे मुस्कुरा दिए। सकृत महेंद्र से पहले ही सिरों की ओर बढ़ गया था। सिरों ने हंसकर अपनी बाहू उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु मद के शैथिल्य के कारण आसन से उठ ना सकी। वह हिम शीतल सुरा का चषक चूसती रही। पृथ्वीसेन के नेत्र उस ओर उठे, परंतु उसने दृष्टि फिरा ली। उसने देखा नर्तकी वसुमित्रा उसकी संगति की आशा से उसकी ओर देख रही थी, और आर्य अमृता भी उसकी अभिप्राय से उसकी ओर पग बढ़ा रही थी। अमृता की ओर बढ़कर पृथ्वीसेन ने उसके हाथ थाम लिया। आशा से उसकी दृष्टि आचार्य रुद्रधीर की ओर गई। वह पल भर ठिटका और फिर नृत्य करने लगा। पृथ्वीसेन प्रति पल कुछ पश्चात कंखियों से समाप्त वर्त सर्वार्थ के चारों ओर बैठे आचार्य रुद्री और द्विज कुलवर के गुरुजनों की ओर देख लेते। उनकी चेतना निरंतर उसी ओर लगी थी। अमृता का हाथ थामते समय उसे शंका हुई। आचार्य रुद्री का अनुज वसुधीर खिन्न होकर विरोध करना चाहता था, परंतु जस के संकट से विवश रह गया। पृथ्वीसेन के रोम क्षण भर के लिए सतर्क हो गए। इस सतर्कता से मद से उठा अनुमद विक्षिप्त सा हो गया। अमृता सुरा के प्रभाव और श्रांति के कारण नेत्र में शिथिल हो गई थी, परंतु पृथ्वीसेन संतोष अनुभव कर रहा था। नृत्य के रस की अपेक्षा उसे आचार्य रुद्रधीर और कुलबर के मौन से ही अधिक तृप्ति अनुभव हो रही थी। सुड़ा के अनुमान से क्षुब्ध विचारों में वह कल्पना करने लगा। एक एक समय अभिजात कुल की कुमारी की सेविका में कंधा देने के प्रयत्न में इसी रुद्रधीर ने मेरा अपमान किया था। आज स्वयं उसकी अनुजा उसके नेत्रों के सम्मुख मेरी भुजाओं में मेरे वक्षस्थल पर सुख पा रही है, और वह देखकर भी मौन है। यह शक्ति का अधिकार। शक्ति मद की मुस्कान उसके ओठों पर ना छूटी। वह परम संतोष से रुद्रधीर को दिखा कर अमृता को आंगन में लेकर नृत्य करने लगा, परंतु वह तृप्ति अमृता के शरीर के स्पर्श से नहीं शक्ति के गर्भ की थी। ज्वाला आर्य धृति शर्मा के साथ नृत्य कर रहे थे, परंतु उसके नेत्र निरंतर पृथ्वीसेन का अनुसरण कर रहे थे। नृत्य का चक्र समाप्त होते धृति शर्मा की भुजा से मुक्त पाकर वह पृथ्वीसेन की ओर बढ़ी और उसके विस्तार पर उपधान का आशा लेकर शांति से तीव्र श्वास लेने लगे। उसने अपने प्रतिकूल नारियों की अनुरक्ति देखकर पृथ्वीसेन का हृदय गर्व से उमड़ रहा था। जो जो नृत्य और पान के कारण अतिथियों का पर शांति और शैथिल्य का प्रभाव बढ़ रहा था, देवी मल्लिका की दासियां विशेष तत्परता से सुरा के चषक प्रस्तुत कर रही थी। पृथ्वीसेन के मन में सांत्वना थी कि सबसे अधिक आकर्षण और सत्कार के केंद्र वही था। दासियां सबसे प्रथम उसके ही सम्मुख चषक प्रस्तुत करती। स्वयं मल्लिका ने दो बार उसके सम्मुख चषक उपस्थित किया। यह सम्मान केवल महासमंतों को ही प्राप्त था। दासियों द्वारा श्वेत पोच कर सुगंध लगा देने के पश्चात अनेक अतिथि और कुन्नानी अत्यंत शांत और शिथिल होकर उपाधानों के आश्रय विश्राम की मुद्रा में बैठे शीतल सुरा का शोषण करने लगे। कुछ समय समाज स्थल के चारों ओर पुष्पित मालती के कुंजों की और विश्राम के लिए ध्यान स्थान की खोज में चले गए। बाधकों ने पुनः आराम करने पर प्रतिष्ठा ने अपनी आश्रय शिथिल बैठी ज्वाला को उठाने के संकेत से स्पर्श किया। उसके निश्चल रहने पर झुककर उसने ज्वाला के नेत्रों की ओर देखा। वह नृत्य के लिए असमर्थ पृथ्वीसेन भी बैठा रहा। उसे शिथिल बैठा देखकर मल्लिका के संकेत से एक दासी ने दो सुरापूर्ण चषक ज्वाला और पृथ्वीसेन के लिए आधार पर प्रस्तुत किए। मल्लिका के प्रति कृतज्ञतापन कर दोनों ने स्वीकार कर लिया और नृत्य के दृष्टि लगाए परस्पर स्पर्श के से सुख अनुभव करते बैठे रहे। ज्वाला समीप ही महेंद्र के साथ बैठी सिरों की ओर देख रही थी। सिरों उपधान पर सिर रखे सुप्त प्राय थी, और महेंद्र अपनी भुजा में एक नर्तकी को लिए उससे सह रहस्य वार्ता में मग्न था। पृथ्वी सेन मध्य के प्रभाव से तितर पद होकर बेताल नृत्य करते लोगों की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। वाद नृत्य के लिए बनने लगे, कुंजों में विश्राम के लिए चले गए। अनेक अति पुनपान और नेत्र में भाग लेने के लिए समाज स्थल की ओर लौट आए। अनेक नृत्य के लिए अतिथि अपने अपने संगी चुनने लगे। ज्वाला और पृथ्वीसेन के सम्मुख पुनः सुरापूर्ण चषक लाए आए। देवी मल्लिका से आदर और कृपा पाकर वह पुलकित हो रहा था। वसुमित्रा को पृथ्वीसेन की ओर दृष्टि के देख ज्वाला ने उसकी भुजा को दोनों हाथों से थाम लिया। पृथ्वीसेन के नेत्र उसके उठे हुए नेत्रों की ओर झुक गए। उस नेत्रों को उत्तेजना मदरा से भी प्रबल थी। रसिकों के श्रांत हो जाने के कारण नृत्यों का क्रम अव्यवस्थित होता जा रहा था। इच्छा होने से ही बीच में कोई बिस्तर पर जा बैठता और दूसरा उसके संगी का साथ देने के लिए बढ़ाता। कुल नारियां प्रायः श्रांत होकर अपने परिजनों के समीप जा बैठी थी। युवक और नर्तकियां उच्छृंखल और अत्यंत वेग से कोलाहल और चित्कार कर नृत्य कर रहे थे। पृथ्वीसेन नेत्र में असमर्थ ज्वाला को बहुमे लिए एक कुंज की ओर बढ़ गया। पृथ्वीसेन को कुंज के भीतर से किसी मदपान से मद निद्रागत के खराटे भरने का स्वर सुनाई दिया। अत्यंत शिथिल ज्वाला को यत्न से संभालते हुए दूसरे कुंज की ओर बढ़ाया। कांत देखकर उसने अपने पांव पर अपना शरीर संभालने में असमर्थ ज्वाला ने अपने बाहु पृथ्वीसेन की गिरमा में डाले। वह उन्माद और उनमें से अर्ध चेतन हो रही थी। एक अवरुद्ध उच्छ्वास से उसने पुकारा, आह प्रिय। वादियों से नृत्यों की धुनें सुनाई दे रही थी और उन्मत्त जन द्वारा किए गए अनेक प्रकार के कोलाहल भी, परंतु जब कुछ स्पर्श था कुछ पृथ्वीसेन के कान ज्वाला के उस अत्यंत आवेग में उच्छ्वास से पूर्ण हो गए। कुंज के आधार में उसे केवल ज्वाला के कमल की कली के समान उभरे मुंदे नेत्र दिखाई दे रहे थे। उसके अंक में शिथिल ज्वाला ने उसे कंटकित कर दिया। कुंज के अंधकार में दीर्घ श्वास लेती ज्वाला ने अपना शिथिल शरीर संभालने में असमर्थ होकर पृथ्वीसेन को आश्रय के लिए बाहों से निविड़ आलिंगन में कस लिया। पृथ्वीसेन भी मद के शिथिल में ज्वाला से प्राप्त उत्तेजना में आत्मविस्मृत हो या पुनः समाज स्थल की ओर लौटने का विचार बस्ती में था, परंतु शरीर साथ न दे रहा था। संगीत बात और आनंदोल्लास के स्वर उसके कानों में स्पष्ट हो रहे थे, परंतु समीप ही कुंज की ओर से कान में एक कंस्वर परा और उसका मस्तिष्क फिर सर्क तर्क हो गया। पुनः स्वर सुनाई दिया, कुमार ईश्वर देखा, ईश्वर भी देखा, नहीं यार ईश्वर नहीं है, ईश्वर भी नहीं है। दोनों कंठ स्वर पृथ्वीसेन से परिचित, बलाधिकृत इंद्रदीप और रुद्रधीर का कनिष्ठ कुमार वसुधीर। इन दोनों चिर सत्रों की सतर्कता ने पृथ्वीसेन को आशंकित कर दिया। श्वास रोके वह अब सुन पाने की प्रतीक्षा करने लगा। दो और व्यक्तियों के कुंज की ओर बढ़ने की आहट सुनाई दी और फिर उनका कंठ बिना शर्मा व्याग्रता से कह रहा था, क्या सब आयोजन व्यर्थ होगा? देवस नक्षत्र सप्त ऋषियों की समरेखा में पहुंचना ही चाहता है, देखते नहीं? बलजीत चिंता से बोला, श्वेत केतु अपने सैनिकों को लेकर इस समय प्रेस्त प्रसाद को हस्तगत कर चुका होगा। प्रसाद के अग्नि अर्पण करने होने का संकेत तुर सुनाई दिया ही चाहता है। तुम लोगों ने उसे प्रसाद से निकल जाने दिया, क्या दासपुत्र को संदेह हो गया? पृथ्वीसेन के शरीर पर शीतल सूर्य छा गया। उसने उसे सम्मुख अव्यवस्थित अवस्था में शीतला पीठ पर पड़ी ज्वाला का ध्यान न रहा। उसकी संपूर्ण चेतना कानों में केंद्रित हो गई, स्वयं अपने हृदय की धड़कनों से भयंकर शब्द करती जान पड़ रही थी। उसका अंग प्रत्यंग कांप रहा था। बलजीत फिर बोला, यदि दासपुत्र मल्लिका प्रसाद से जीवित निकल गया तो संकट का कारण होगा। संभव है दासपुत्र भी मद के प्रभाव से विश्राम के लिए किसी लता कुंज में जा पड़ा हो। आर्य अग्नि के हमारे यथेष्ट सशस्त्र सैनिक प्रसाद की प्रति के भीतर उपस्थित हैं। हाँ आर्य, 200 विश्वस्त सैनिक प्रसाद के पृष्ठ द्वार से प्रसाद की प्रचीर के भीतर आ चुके हैं। 100 पृष्ठ द्वार के समीप और 200 सिंह द्वार के समीप छदम वेश में अंधकारपूर्ण बिथियों में छिपे हैं। वे केवल तुर्य के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सहसा रात्रि की निवड़ता नगर के उत्तर भाग से तुर्य का शब्द सुनाई दिया। उसी समय इंद्रदीप की ललकार उच्च स्वर में सुनाई दी, सावधान। परंतु समाज स्थल को घेर कर सिंह द्वार की ओर तुरंत समाज स्थल को घेर कर सिंह द्वार की ओर प्रदूषण मल्लिका प्रसाद के उद्यान कुंजों से भली भांति वर्जित था। अचेत ज्वाला को छोड़कर उत्तरीय शिशिर ढांककर वह दीर्घ पदों से प्राचीर की ओर भागा। भिक्षों की ओट से निकल कर कुछ सशस्त्र सैनिक निरत स्थान की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें देख पृथ्वीसेन पल के शशांत के लिए स्तंभित हुआ, परंतु उसके समीप पहुंचकर उसने सैनिक निर्देश के स्वर में आज्ञा दी, सैनिकों सिंहद्वार की ओर घूम जाने पर पृथ्वीसेन एक वृक्ष की शाखा की सहायता से प्राचीर लांघकर बाहर पथ पर उतर आया। निशस्त्र निसहाय पृथ्वीसेन ने क्षण मात्र के लिए पथ पर खड़े होकर विचार किया, वह क्या कहां जाए। सिंहद्वार पर खड़े अपने रथ और शरीर रक्षकों की ओर अपने पिता पुत्र के 200 सैनिक उन्हें समाप्त कर चुके हैं। अपने प्रसाद की ओर प्रसाद शत्रु के हस्तगत होकर अग्नि अर्पण हो चुके हैं। सिंहद्वार की ओर पथ पर अश्वों की टाप सुनाई दी, वह तुरंत समीप की अंधियारी बीथी में चला गया। अनेक अश्वारोही द्रुत वेग से प्रसाद की परिक्रमा करते जान पड़े। पृथ्वीसेन अंधकारपूर्ण बीथी में आगे बढ़ता गया। अपने कंठ से मुक्त मालाएं और दूसरे मूल्यवान आभूषणों को उतारकर अंधकार में उधर उधर फेंकता जा रहा था। शरीर को उतरिया से ढककर वो शीत से त्रस्त अत्यंत साधारण नागरिक जान पड़ने का यत्न कर रहा था। अंधियारी बीथी के अंत में प्रशस्त पथ पर चंद्रमा का प्रकाश धाम के समान उज्ज्वल था। प्रशस्त पथ और प्रकाश के विपद जनन जानकर वह बीथी में ही ठिठक रहा। इसी बीथी से दूर प्रशस्त पथ पर गणपति और सामंत ओक्रिस के प्रसाद थे। पृथ्वीसेन सोच रहा था पथ पार कर उस ओर जाए वहीं शरण संभव होगी। तत्काल उस पर भी अनेक द्रुत वेगी अश्वारोही के आने की टाप सुनाई दी। पृथ्वीसेन अंधकार में छिप कर देखने लगा। अश्वारोहियों के दल के आगे अग्रकेश और सकड़ित खड़ग खींचे सर पर चले आ रहे थे। पृथ्वीसेन ने सोचा गणपति और सामंत ओक्रिस के प्रसाद भी शत्रु द्वारा घेर लिए गए, अपने मित्रों के यहाँ भी शरण पाना संभव नहीं। पृथ्वीसेन श्वास रोके विधि के अंधकार में सिमटा छिपा था। उसका रोम रोम कांप रहा था और सिर का श्वेत पुंडलियों से होकर एड़ी तक बढ़ रहा था। वह वन में आखेटकों से गिर गए मृग की भांति सिमरता सुकुचता ओट लेता बिथियों के मार्ग में नगर के उपांत की ओर चला जा रहा था। प्रस्तपथ और चंद्रमा का उज्ज्वल प्रकाश सम्मुख देख कर वह भय से कांप उठा। अनेक प्रकार से उसका नाम पुकारती ललकारें उसके शरीर में सिरन उत्पन्न कर रही थी। वह निशस्त्र और निस्सहाय प्राणों के भय से कांप रहा था। पृथ्वीसेन बहुत समय तक भित्तियों में छिपा रहा। सूर्य का प्रकाश होते ही आत्मरक्षा असंभव हो जाने के भय से वह और भी हताश हो रहा था। इस प्रकार छिप छिप कर प्राण बचाने का भी कुछ अर्थ वह समझ न पा रहा था। यदि उसके सशस्त्र सैनिक साथ होते वह अतताइयों को अवश्य प्रास्त करता। यदि वह अकेला होकर भी सशस्त्र होता तो युद्ध का सम्मान पूर्वक प्राण दे देता। अब उसके भाग्य में बाध्य पशु की भांति मारे जाने अथवा मूसी की भांति छिद्र में स्थान ढूंढकर कुछ समय प्राण बचा लेने का अतिरिक्त उपाय न था। उसका शरीर मद का प्रभाव दूर हो जाने से शिथिल हो रहा था। शरीर और मन दोनों में शांति और विकलता अनुभव हो रही थी। पूर्णिमा का चंद्रमा क्षितिज पर जा पहुंचा। पथ के पश्चिम ओर बने भवन की छाया से नगर के दक्षिण भाग के पथ पर अंधकार छा गया। पृथ्वीसेन आशंकित पदों से पथ पर आकर जिस ओर बग उठे चला जा रहा था। सम्मुख अंधकार में कोई छंद गुनगुनाते हुए किसी मनुष्य की आकृति अपनी ओर आती दिखाई दी। समय पाने पर उन्होंने पहचाना कि वैधवर अस्थावीर चुबुक स्त्रोत पाठ करते आ रहे थे। अस्थावीर चुबुक की दृष्टि पृथ्वीसेन की ओर गई। पृथ्वीसेन का शरीर वैधवर के हाथों में 2 मास तक रह चुका था। भिन्न वेशों में भी उसे पहचान लेने में वैधवर को दुविधा न हुई। निशंक स्वर में उन्हें संबोधित किया, आर्य कहाँ जा रहे हैं। वह दिशा संकट में होगी। अश्वारोही दल आर्य को खोजता उसी ओर गया है। तात अस्थवीर पृथ्वीसेन ने निराश हो उतर दिया, छला जाकर इस समय में निराश्रय और निस्सहाय हूँ। तब सभी दिशाएं और सभी स्थान अब मेरे लिए संकट में है। प्रश्न है केवल समय का। अवधि ने छल द्वारा मुझे अपने पास में फंसा लिया है। विनम है केवल मुझे हाथ में पाने का। बधि का कास्ट मेरे मुंड की प्रतीक्षा कर रहा है। तात अस्थवीर निशस्त्र होने के कारण मैं निस्सहाय हूँ, आशरण हूँ, अपमानजनक मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अस्थवीर पृथ्वीसेन की ओर देखते रहे। अंधकार में फैले अपने नेत्रों में भी करुणा का आभास था। मद्र अर्ध स्वर में बोले, पुत्र यदि शरण चाहते हो तो समीप बुद्ध रक्षित संघाणम है। बिहार प्रत्येक शरणागत का आश्रय है। यह युद्ध के द्वंद्व और शासन की सीमा से परे है। कृपा मूर्ति शरण पाने से यह असहाय कृतार्थ होगा। पृथ्वीसेन ने कर जोड़ कर आशापूर्ण स्वर में यातना की। ब्रह्ममुहूर्त में सकल के जनसमाज की निद्रा भेरी घोष और दुदुम्भी नाद से भंग हुई। आशंकित और विस्मित जन ने आलिंदों और गवाक्षों से झाँक कर अथवा सैया पर लेटे सुना तदगुणा निधान क्षत्रिय कुलभूषण धर्मरक्षक महासामंत पट्टा भट्टाड़क श्री देव सर्वार्थ भूमि को पाप मुक्त कर मद्र के कुलवर्ण की अनुमति से मद्रगण की गण परिषद के गणपति का निरादन ग्रहण करते हैं। मद्रगण की गण परिषद के संभावक और सचिव का आसन मद्रगण के कुलवर्ण की अनुमति से आचार्य श्रेष्ठ सशस्त्र सामंत महापंडित रुद्रधीर ग्रहण करते हैं। मद्रगण के कुलवर्ण की अनुमति से मद्रगण की सेना का शासन महासेनापति के पद से सामंत वर्ग आग्रह ही सामंत कर्णवीर ग्रहण करते हैं। मद्रगण का राजकुल वर्ग के वर्णाश्रम धर्म का पालन कर प्रजा का न्यायानुमोदित शासन करेगा। संपूर्ण द्विज कुल यवन शूद्र और दास निज धर्म में स्थित होकर राजाज्ञा का पालन करें। कार्तिक की पूर्णिमा का चंद्रमा सागल से सम्मिलित शासन की चरम प्रतिभा को समेट कर अस्त हो गया। सूर्योदय के समय सागर में सर्व वर्णाश्रम धर्म के पुनः स्थापना हो जाने से द्विज कुल की महिमा स्थापित हो गई। मुख्य पथों और विधियों के चतुर्मार्ग द्विज सामंतों के सैनिकों और शस्त्र और सिरस्थान सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। सागर की यह नवीन शोभा जन के एक भाग के लिए उत्साह और संतोष का कारण थी, दूसरे भाग के लिए मर्मांत विभिषिका और निरुत्साह का कारण और सर्वसाधारण जन के लिए केवल कौतूहल मिश्रित आतंक का कारण। सागल के वही राजपद थे, वही विधियाँ, वही प्रसाद और वही अट्टालिकाएं, तराग और उद्यान, जन भी वही थे, परंतु व्यवस्था दूसरी थी। बौद्ध धर्म के अनुसार सब जीवों की समानता की कल्पना में द्विज कुल का निरुत्साह और हीन वर्ग की उच्छृंखलता वर्णाश्रम की राज व्यवस्था से दूर हो गई। प्रेस्त की नीति और अनुग्रह से धन के बल पर उठने वाले प्रसन्न आसन और सैन्य संग्रह का अधिकार पाए व्यवसायी जन और श्रेणी अंतरायणों के जेठक अधिकार च्युत हो गए। द्विज कुलों के अतिरिक्त अन्य वर्ग ग्राम अग्रहार अधिकार से हीन हो गए। बौद्ध विहार अपनी अग्रहार संपत्ति से हीन हो गए। पथों और विधियों में कसाय चीवरधारी सूर्य की किरणों में चमकते मुंडित सिर भिक्षुओं के दल प्रायः लोप हो गए। उच्च स्वर में बुद्ध की शरण का निमंत्रण देकर हीन वर्ग का उत्साह बढ़ाने वाला उनका स्वर मंद हो गया। प्रेस्त का प्रसाद और उसका कुल मूल तक को भस्म करने वाली अग्नि के समर्पण हो गया। सशस्त्र सैनिकों से रक्षित उतुंग अट्टालिकाओं के स्थान पर अग्निदेव की जिह्वा से चाटे जाकर कृष्ण खंडहरों के रूप में प्रेस्त प्रसाद के कंकाल चारों ओर फैले भस्म में करे थे। प्रेस्त तथा अभिधर्म से सहानुभूति रखने वाले यवन सामंत ओक्रिस और मार्थ आग्रह संपत्ति और सैन्य अधिकार से हीन हो गए। पक्षाधात से मृत प्रागणपति अपनी सैया पर पड़े अबोध भाषा में तथागत के वचन सुनते सुनते निर्वाण की प्रतीक्षा करते रहे। आचार्य रुद्रधीर के सैनिकों ने सागल के पथ बीतियाँ और प्रसाद क्षण डाले, परंतु प्रेस्त का कहीं पता न चला। पृथ्वीसेन के बद रहने से आश्चर्य को शांति न थी। सर्प को मार यदि उपेक्षा से सपोले को छोड़ दिया जाए तो वही कालांतर में सर्प बन जाता है। पृथ्वीसेन बुद्ध रक्षित संघारम शरण पाकर दिन भर अस्थावर चुबुक की साधना गुफा के अंधकार में निराहार लेटा चिंतामग रहा। दोपहर रात्रि व्यतीत हो जाने पर पृथ्वीसेन ने अस्थावीर चुबुक से संघारम से बाहर जाने की अनुमति के लिए अपराधना की। अस्थावीर ने पृथ्वीसेन का अभिप्राय अनुमान कर अपनी स्वाभाविक मुस्कान में प्रश्न किया, प्रिय प्रज्वलन से आड़ बनते प्राणों के भय से मैं यहाँ आर्त मूषिक के समान कब तक छिपा रह सकता हूँ? पृथुसेन ने उत्तर दिया, भंते अनुमति दें। युद्ध में विजयी होकर लौटने पर भंते ने कृपा पूर्वक मेरे 6 शरीर का उपचार कर प्राण दान दिया था। शत्रु से त्रस्त होने पर भंते ने शरीर ने शरण देकर दूसरी बार प्राण दान दिया। मैं भंते के सम्मुख 2 जीवनों के लिए आभारी हूँ। भंते अनुमति दे अंधकार में बाहर जाकर शत्रु का सामना करने का अवसर देखूँ। शत्रु का पराभव करूँगा अथवा प्रयत्न में प्राण विसर्जन करूँगा। मुझे दैन्य में आत्महनन स्वीकार नहीं। आस्थावीर युवक पृथ्वीसेन को अपनी समीप आसन ग्रहण करने के लिए संकेत कर बोले, आर्य दीन होकर आत्महनन करना श्रेय नहीं। शत्रु के पराभव का विचार उचित है, परंतु अंधकार में शत्रु का पराभव कैसे होगा? शत्रु का पराभव करने के लिए उसे पहचानना आवश्यक है। शत्रु को पहचान सकूंगा भंते। आस्थावीर के आशय के प्रति शंका से पृथ्वीसेन ने अपने नेत्र में देखा, तो आर्य शत्रु को यहाँ ही पहचाने? अस्थावीर अपनी सतत मुस्कान से बोले। पृथ्वीसेन ने जिज्ञासा से विस्फोटित नेत्रों से अस्थावीर की ओर देखा। भंते का अभिप्राय, आर्य शत्रु को मन ही भावना से होता है। शत्रु तो मन की भावना से होता है। भंते, इस समय मेरे मन की अवस्था तत्वज्ञान का तर्क ग्रहण करने योग्य नहीं। मैं जीवन की रक्षा के लिए संघर्ष की बात कर रहा हूँ। कुछ समय चिंता में माथे पर हाथ रखकर पृथ्वीसेन ने निवेदन किया, मुंते मुझे संघाराम से बाहर जाने की अनुमति दें। अस्थावीर की शांत मुद्रा में अंतर न आया। आर्य जीवन की रक्षा के विषय में ही मैं कह रहा हूँ। आर्य को विपत्ति में जानकर रक्तपात निवारण के लिए संघाराम में स्थान दिया था। इसके लिए नहीं कि आर्य रक्तपात करने और विपज्जनक उपस्थिति उत्पन्न करने के अवसर की प्रतीक्षा करें। पृथ्वीसेन अवाक अस्थावीर की अभिचल मुस्कान की ओर देखता रह गया। कल्पना में उसे अतीत की घटना दिखाई देने लगी, जब घायल होकर मृत्यु और जीवन के बीच झूलते उसके शरीर को अस्थावीर युवक ने अपने कृपालु कड़ों से प्राण दान दिया था। उस समय भी अस्थावीर के मुख पर यही मुस्कान थी, उसका स्वर भी यही था। अस्थावीर ने आश्वासन दिया, आर्य शक्ति रहते तुम्हारे जीवन की रक्षा करूँगा। पृथ्वीसेन ने निरुत्तर रहने पर भी अस्थावीर ने एक श्रमण को पुकार कर कुछ फल उपस्थित करने का आदेश दिया। पृथ्वीसेन ने अत्यंत अनिष्ठा होने पर भी अस्थावीर का आदेश अग्राह्य न कर सकने के कारण कुछ फलाहार किया। अस्थावीर अनेक रोगियों के सेवा उपचार के लिए दिन के समय नगर के अनेक भागों में जाते थे। उन्होंने पृथ्वीसेन को नगर की व्यवस्था सुनाई। नगर में रक्तपात विशेष न हुआ था, परंतु संपूर्ण शासन व्यवस्था पलट गई थी। पृथ्वीसेन के सहयोगी मित्र वर्ग उनकी सहायता कर सकने योग्य अवस्था में नहीं था। पृथ्वीसेन का उनके यहाँ जाना पृथ्वीसेन स्वयं उनके लिए भी विपत्ति का कारण होता है। रुद्रधीर के चर प्रत्येक पथ विधि और उपांत में पृथ्वीसेन को खोज कर विफल हो गए थे। उनका अनुमान था पृथ्वीसेन षड्यंत्र की गंध पाकर पहले ही मल्लिका प्रसाद से निकल नगर की प्राची लांग गया। उन्हें शंका थी पृथ्वीसेन छदम्बेश में दुर्वाज से छीने हुए अपने आग्रह के ग्रामों की अर गया है। रुद्रधीर और सामंत सर्वार्थ के चर उसी और उसकी खोज कर रहे थे। पृथ्वीसेन ने अस्थावीर की बात से विशेष संतुना न पाकर असंतोष से प्रश्न किया, भंते क्या मैं अपना शेष जीवन आखिर तक के हाथ से भागे हुए पंजू जीव की भांति यहाँ छदम स्थान में छिप कर देने और कायरता में व्यतीत करूँगा? कायरता और निरुत्साही वीर पुरुष को शोभा नहीं देते। आर्य, अस्थावीर ने उत्तर दिया, भंते ऐसी अवस्था में रक्तपात और हिंसा की आशंका से मैं किस प्रकार निष्क्रिय बैठा रहूं? शत्रु के संग्राम रहने करने के अतिरिक्त मेरे लिए उपाय ही क्या? पृथ्वीसेन ने अधीर स्तर में पुनः अन्याय किया, आर्य रक्तपात शत्रु को पराजित करने का सफल उपाय नहीं। अस्त्र द्वारा शत्रु का वध किया जा सकता है, उसे कुल काल के लिए वश किया जा सकता है, परंतु विजय नहीं किया जा सकता। जिसका वध हो गया जो रहा ही नहीं उससे विजय नहीं किया जा सकता। मनुष्य मृत्यु की अपेक्षा पराभव को केवल कायरता और प्रतिहिंसा की भावना से स्वीकार करता है। दमनकारी शत्रु की शक्ति इच्छा होते ही पराजित हुआ व्यक्ति पुनः प्रतिकार का यत्न करता है। आर्य ऐसा दमन भी विजय नहीं, आर्य संसार की विजय केवल द्वेष और प्रतिकार की नई पौध का बीज मात्र होता है। आर्य विचारों शत्रु के मृत शरीर से कई वह नहीं रहता। आर्य शत्रुता शरीर करता है, मन की भावना शत्रुता करती है। अस्थावीर ने प्रश्न किया, मन की भावना बनते। छिन्न स्वर में पृथ्वीसेन ने उत्तर दिया, तो फिर आर्य विजय शत्रु का शरीर वश करने में नहीं उसके मन की भावना को वश करने में है। जैसे तथागत ने देवदत्त के मन को, धर्म घोष ने सम्राट अशोक के मन को और आहर्त नागसेन ने सम्राट मिलिंद के मन को विजय किया था, उसी प्रकार आर्य भी आचार्य रुद्रधीर को विजय कर अस्थवीर मौन हो सम्मित दृष्टि से पृथ्वीसेन की ओर देखते रहे। पृथ्वीसेन कभी अस्थवीर के साथ सम्मित मुख की ओर देखता और कभी ग्रीवा झुका उनके शब्दों को सुनता रहता। अस्थवीर कहते गए, आर्य मनुष्य के शत्रु कितने हैं, कौन है, कहाँ है, मनुष्य उन सब को नहीं जानता, जान भी नहीं सकता। मनुष्य शस्त्र के कितने शस्त्रों का हनन करेगा। एक दिन सागल की प्रजा आर्य को पथ पर अश्वारूढ़ देखकर जयघोष करती थी। आज आर्य को इस अवस्था में देखकर प्रजाजन उत्साहित न होंगे क्या, इसलिए कि वे आर्य के शत्रु हो गए, आर्य ने उनकी क्या हानि की। आर्य के दर्प विजय के केंद्र के अनेक सैनिकों का हनन किया, क्या वे आर्य के शत्रु थे, आर्य ने उन्हें कभी देखा ना था, आर्य को उन्होंने कभी देखा ना था। उस शत्रुता का कारण केवल मन की भावना और शत्रुता का विश्वास था। आर्य शत्रुता मन का विषय है। आर्य जो शत्रु से पराजय स्वीकार करता है और जो शत्रु को मारने के लिए जाता है, वे दोनों ही शत्रु के भय के कारण ऐसा करते हैं। आचार्य रुद्रधीर आचार्य के प्राणों के ग्राहक इसलिए है कि उन्हें अपने स्थिति और प्राणों के लिए आर्य से भय है। वे आर्य के भय से कांप रहे हैं। आर्य जो भय करता है, त्रास मानता है, वह वीर नहीं, वीर और साहसी वही है जिससे किसी का भय नहीं, किसी का त्रास नहीं। आर्य जो तुमसे भय करता है, उसे तुम भी भय करो करते हो। शक्तिमान का भय सुसुप्त है, शक्तिहीन का जागृत। भय का कारण होने से भय अवश्य होगा। निर्भय वही है जो भय के कारणों से मुक्त है। तुम्हारी शक्ति से यदि तुम्हारा भयभीत, यदि दूसरा भयभीत है तो उसका भयभीत रहना तुम्हारे भय का गुप्त बीज है। अनुकूल भूमि और ऋतु पानी से भय का यह बीज किसी भी समय अंकुरित हो सकता है। आर्य ऐसी अवस्था में शक्ति भय का ही कारण है। अन्य के भय का और अपने भय का भी ऐसी शक्ति सुख का होना नहीं हो सके। आर्य दुख के साधन और कारण एकत्र करके जो मनुष्य सुख की ओर आशा करता है, वह भ्रम के मार्ग का अधिक है। सुख की ऐसी इच्छा दरिद्र के मनोरथ की भांति केवल क्लेश का हेतु होती है। अस्थावीर जो प्रातः मध्यान अथवा संध्या समय भिक्षाटन और रोगियों की उपचार सेवा से अवकाश पाने पर पृथ्वीसेन के समीप आकर वार्तालाप करने लगते। पूरा एक पक्ष व्यतीत होने से पूर्व ही बिगड़ के लिए संघारम के बाहर जाने की इच्छा पृथ्वीसेन ने त्याग दी। वह अस्थावीर से अनाशक्ति और चिरंतन सुख के विषय में प्रश्न कर उनके उत्तरों को मौन कर विचारता रहता। उसके मुख और व्यवहार से आस्था और चिंता की मुद्रा जाती रही। उसके लिए क्लेश और बाधा का कारण रावण नेत्रों से उत्सुकता लिए बुद्ध कर होकर आदर से उपदेश सुनता। एक संध्या अस्थावीर ने उपदेश के पश्चात पृथ्वीसेन से अनुनय की भक्ति के भन्ते सेवक सर्वभौम मैत्री की भावना ग्रहण कर चिरंतर सुख के मार्ग का पथिक बनना चाहता है। भन्ते सेवक को तथागत के धर्म का उपदेश दें, त्रिशरण में ग्रहण करें। स्मित वदन अस्थावीर ने उत्तर दिया, आर्य उसका भी समय आएगा जो सुख अपरिग्रह के मार्ग पर किसी से कुछ छीने बिना प्राप्त होता है, उसे मनुष्य को कोई वंचित नहीं कर सकता। आयुष्मान उसका भी समय आएगा। पृथ्वीसेन स्वेच्छा से ही भिक्षु होकर विनय और शील का पालन करने लगा। वैधवर अस्थावीर चिबुक सागल के विहारों और भिक्षु संघ के नयन असंग अस्थावीर अहर्त धर्म रक्षित का संदेश पाकर मध्यांतर में उनके सम्मुख उपस्थित हुए। अर्हत संघ अस्थावीर धर्म रक्षित अभिधर्म पर आए संकट के कारण अत्यंत चिंतित थे। नगर में दुदुम्बी द्वारा गणपति सामंत श्री देव सर्वार्थ की आज्ञा का समाचार पाकर वे उद्विग्न हो गए। गणपति की विज्ञप्ति थी, जो नागरिक मरणाश्रम धर्म घातक दासपुत्र प्रथुसेन को मृत्यु अथवा जीवित अवस्था में सागल के राजपुत्रों को सौंपा गया। वह गणराज्य कोष के 500 स्वर्ण मुद्रा और 1 ग्राम के अग्रहार का अधिकारी होगा। जो नागरिक गणराज्य के अनुशासन की अवज्ञा कर धर्माघातक दासपुत्र प्रथुसेन को शरण देगा वह धर्मस्थान से मृत्युदंड का अधिकारी होगा। अस्थावर चुबुक ने विनाश के नियम अनुसार 5 गण अंगों से प्रणाम के संग अस्थावीर धर्म रक्षित की वंदना के संग अस्थावीर ने कृपा हस्त उठाकर अस्थावीर चुबुक के स्वस्थ और आरोग्य की कामना की। अस्थावीर चुबुक ने जानू पृथ्वी पर टिका अपने आदेश के लिए प्रार्थना की। चुबुक ने संग अस्थावीर के आदेश के अनुशासन से कुशासन ग्रहण किया और संग अस्थावीर की चिंता के कारण का अनुमान करके भी उनके बोलने की प्रतीक्षा में मौन रहे। संग अस्थावीर ने मन की उद्विग्नता के कारण संक्षेप में कहा, आयुष्मान अभी धर्म पर उपस्थित संकट से अवगत हैं? बंते चुबुक ने उत्तर दिया, धर्म पर संकट नहीं आता, केवल धर्म के प्रति विश्वास प्रकट करने वाले जन भयभीत होकर संकट अनुभव करते हैं। धर्म कभी अधिक मनुष्यों के हृदय और विश्वास में स्थान पाता और कभी कम मनुष्यों के ऐसी भिक्षु की धारणा है। अस्थावीर चुबुक के उत्तर पर मन में विचारक अस्थावीर बोले, आयुष्मान मेरे मुख से न केवल कहने पर भी मेरे मन में उपस्थित चिंता के प्रसंग से अवगत हैं। आयुष्मान ने राज्य की विज्ञप्ति का समाचार सुना है। भंते की चिंता का कारण मैंने अनुमान किया है, विज्ञप्ति मैंने सुनी है। चुबुक ने उत्तर स्वीकार किया, राज्य कोष के पात्र प्रथुसेन का बुद्ध रक्षित संग्राम में शरण पाना इस संकटमय परिस्थिति में अभिधर्म और संघ के लिए आपत्ति का कारण है। रुद्रधीर धर्म का द्वेषी है, आयुष्मान जानते हैं। भंते धर्म की रक्षा के लिए शरणागत को शरण देना आवश्यक हुआ, संघ शरणागत को शरण दे ऐसा अभिधर्म का आदेश है। परंतु आयुष्मान अस्थावीर के मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं गहरी हो गई। संघ और धर्म की रक्षा के लिए इस समय दूसरा कर्तव्य है, जैसे उपोषित श्रेय होने पर भी रुग्ण शरीर उपासक के लिए उपोषित उचित नहीं। यदि संघ अस्थावीर की आज्ञा हो तो भिक्षु निवेदन करे, चिबुक ने कर जोर कर आहार धन बक्षित की ओर देखा। संग अस्थावीर के सिर झुकाकर अनुमति देने पर चिबुक बोले, भंते जैसे जल का विशेष उपयोग तीर्षा अनुभव होने पर होती है, उसी प्रकार धर्म का पालन भी संकट के समय महत्व रखता है, परंतु संघ की रक्षा एक साधारण जन की रक्षा की से अधिक महत्वपूर्ण है। धन बक्षित ने चिबुक के नेत्रों में देखकर चेतावनी दी, भंते बोधिसत्व ने शरणागत अकिंचन पक्षी की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस अर्पण किया था, अपने शरीर का महत्व उनका बुद्धत्व और धर्म अकिंचन शरणागत पक्षी के लिए शरीर देने में ही हुआ। भंते भिक्षु का बोध आदेश होता है कि धर्म की रक्षा और संघ के धर्म की रक्षा का महत्व शरणागत को शरण देने में है। इससे संघ का शरीर संकट अनुभव करके भी धर्म की वृद्धि करेगा और शरणागत को त्याग कर संघ के शरीर रक्षा के मोह से धर्म की हानि होगी। बहुत समय तक विचार में मौन रहकर संघ अस्थावीर ने अस्थावीर चुबुक को संबोधित किया, आयुष्मान विनय का उपदेश है कि जब भिक्षुओं में परस्पर विचार और मत का भेद हो मार्ग का निर्णय संघ सभा करे, परंतु आयुष्मान उग्र संकट के कारण यह रहस्य संघ सभा में प्रकट करना भी संघ के लिए आपत्ति का हेतु होगा। आयुष्मान के धर्म भावना का आदर कर संघ अस्थावीर ने अपना विचार और आदेश कह दिया। अस्थावीर चुप मस्तक झुकाए बैठे रहे और फिर संघ नायक को विनयपूर्वक प्रणाम कर आज्ञा लेकर बुद्ध रक्षी संग्राम में लौट गए। अस्थावीर चुप का करुणा और मैत्री की भावना से सदा प्रसन्न मुख गंभीर हो गया। द्वंद्व से मुक्त उनके मन में घोर द्वंद्व उत्पन्न हो गया। संघ अस्थावीर की आज्ञा की अवज्ञा कर वे विनय के नियम का उल्लंघन किस प्रकार करें और वे बोधिसत्व के उपदेश के विरुद्ध आचरण किस प्रकार करें, चित्त स्थिर कर्तव्य मार्ग का निश्चय करने के लिए वे रात्रि के 3 पहर बीते तक तथागत के बिंब के सम्मुख बैठकर विचार करते रहे। अस्थावीर ने विचार से तथागत की धर्म भावना मन में ग्रहण कर मार्ग का निर्देश पाया। गृह दीप की ज्योति से प्रतिभासित तथागत की प्रतिमा के उज्जवल मुख मंडल की ओर दृष्टि लगाया। उनका मुख पुनः चिंता मुक्त होकर प्रसन्नता से खिल उठा। तथागत के बिंब के सम्मुख पृथ्वी पर मस्तक रख उन्होंने प्रणाम किया। शिव सूर्य के पूर्व ही प्रतिहंस की गुफा के सम्मुख उपस्थित हुए। प्रतिहंस विचार मग्न था। सम्मित वदन अस्थावीर को सम्मुख खड़े देखकर उसने उनके आदर आसन छोड़कर श्रद्धा से प्रणाम किया। मन में कोई दुविधा हस्त आयुष्मान कृपा हस्त उठकर अस्थावीर ने संबोधित किया। नहीं बनते बनते कि आप उपदेश से उपासक दुविधा से मुक्त हुआ। नतमस्तक प्रतिहंस ने निवेदन किया। आयुष्मान कोई भय हस्त शेष नहीं बनते। आयुष्मान कोई तुम्हारा शत्रु है। बनते की दया से शत्रु रहित हुआ हूँ। आयुष्मान आचार्य रुद्रधीर के द्वार पर भिक्षा के लिए चलेंगे। भन्ते आचार्य रुद्रधीर के द्वार पर अथवा और भी जहाँ आदेश हो। आयुष्मान तथागत की शरण धर्म की शरण संघ की शरण ग्रहण करने के प्रज्वन से प्रवज्य दान के लिए संघ से प्रार्थना करते हो। भन्ते मैं प्रवज्य की भिक्षा के लिए संघ से प्रार्थना करता हूँ। आयुष्मान की इच्छा पूर्ण होगी। आयुष्मान प्रवज्य ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हो। अस्थावीर चिबुक ने बुद्ध रक्षित संग्राम के भिक्षुओं को एक नवीन श्रमण को तुरंत प्रवर्तन दान देने की आयोजना के लिए आदेश दिया। पृथ्वीसेन माध्यान्ह के पूर्व ही मुंडित सिर कसाई चिवर धारण किए और हाथ में भिक्षा पात्र लिए अस्थावीर वैद्य चिबुक के साथ भिक्षा के लिए बुद्ध रक्षित संग्राम के द्वार से निकला। वैद्यवर चिबुक एक अन्य भिक्षु सहित वर्णाश्रम धर्म के व्यवस्था गण परिषद के समय के आचार्य रुद्रधीर के प्रसाद के सशस्त्र सैनिकों से रक्षित सिंह द्वार पर उपस्थित हुए। प्रतिहारी द्वारपाल ने निवेदन किया भन्ते भंडार गिरीश से भिक्षा आने तक प्रतीक्षा करें। ससम्मित बदन अस्थावीर ने द्वारपाल को उत्तर दिया भद्र आज आचार्य के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करने की इच्छा है। भन्ते आचार्य की आज्ञा है कि उनके अनुमति पाए बिना प्रसाद में प्रवेश निषेध है। प्रतिहारी ने क्षमा याचना की। भद्र आचार्य जिससे भिक्षु चिबुक और उसके साथी भिक्षु का आशीर्वाद निवेदन करें। अस्थावीर ने मुस्कुराकर आग्रह किया। आस्थान से आदेश होने पर अस्थावीर चिबुक अपने साथी भिक्षु को लिए सहस्त्र प्रतिहारी सहित आचार्य रुद्रधीर के स्थान में प्रविष्ट हुए। आचार्य अनेक तारपत्र और भोजपत्र सम्मुख रखे लखों से अनेक निर्देश लिपिबद्ध करवा रहे थे। भिक्षुओं को सम्मुख देखा आचार्य ने आसन से उठकर करवा दो अस्थावीर जी को संबोधित। आचार्य प्रवर्धन नापत्य आचार्य रुद्रधीर मदर के सर्वश्रेष्ठ वैद्य यानी अस्थावीर जी की वंदना करता है। अस्थावीर के साथ ही भिक्षु की ओर से नमस्कार कर आचार्य ने कहा अपरिचित श्रमण की गृहस्थ की वंदना स्वीकार करें। दोनों भिक्षुओं के आसन ग्रहण कर लेने पर आचार्य स्वयं भी बैठे और निवेदन किया अस्थावीर सेवा भिक्षा ही है। अस्थावीर बोले आचार्य अपने मन की कामना कहें भन्ते का आशीर्वाद है। शरीर रोगग्रस्त होने पर वैद्यवर की कृपा की आवश्यकता होगी। मुस्कुरा कर आचार्य ने पूरा हाथ जोड़े। अस्थावीर भी मुस्कुराए मन का क्लेश हो सकता है आर्य भन्ते जिसने स्वयं संसार त्याग दिया है परिहास से आचार्य ने उत्तर में प्रश्न किया वो दूसरों को क्या देगा। अस्थावीर की मुस्कान उपला ना ही उन्होंने उत्तर दिया आचार्य ज्ञानी है पाए बिना किसी वस्तु का त्याग नहीं किया जा सकता। संसार को कोई पा नहीं सकता इसलिए उसे कोई त्याग भी नहीं सकता। परिग्रह और त्याग दोनों का प्रयोजन संतोष है। जब तक मन में चिंता है संतोष नहीं। अस्थावीर का वचन सत्य है आचार्य ने स्वीकार किया। कर्मकांडी और संसारी के लिए सदा ही असंतोष के अनेक कारण हैं अनेक चिंताएं हैं। अस्थावीर के समीप आसन पर बैठा भिक्षु बोला अनेक चिंताओं में एक चिंता से आचार्य को मुक्ति देने के लिए भिक्षु उपस्थित हुआ है। भिक्षु का स्वर सुन गिरवा उठा विस्मय से नेत्र फैल के आचार्य ने बोलते हुए भिक्षु की ओर देखा उनके नेत्र खुले ही रह गए। भिक्षु बोला मैं भिक्षु प्रतिहंसेन सार्वभौम मैत्री का सुख पाकर आचार्य के प्रति शत्रुता के भाव से रहित होकर भय और चिंता से मुक्त हुआ हूँ। आचार्य को भी अपने कारण भय और चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आचार्य के सम्मुख उनके आस्थान में उनके हाथों में उपस्थित हूँ। प्रतिहंसेन को पाकर भिक्षु को सार्वभौम मैत्री के सुख की भिक्षा दें। भिक्षु ने आत्मसमर्पण के भाव से दोनों हाथ फैला दिए। कुछ कहने के लिए खुले आचार्य के होस्ट गहरा निश्वास छोड़ चुप रह गए। वे गिरवा झुकाए मौन बैठे रहे। अनेक क्षण पश्चात अलिंद में प्रहरी द्वारा मध्याह्न का घड़ियाल बजाए जाने के शब्द उन्होंने सजग किया। अभ्यागत भिक्षुओं का संबोधन कर उन्होंने निवेदन किया, भिक्षु पर अन्न ग्रहण करें। नीतिविद आचार्य जानते हैं कि विनय के अनुशासन मध्योत्तर में भिक्षु का अन्न ग्रहण करना उचित नहीं। चिबुक ने निर्द्वंद मुस्कान से उत्तर दिया। आचार्य ने घर आए भिक्षुओं को निराहार रखने के परिताप से लज्जा अनुभव कर क्षमा याचना की। भंते गृहस्थ अपनी उपेक्षा के लिए भिक्षुओं से क्षमा चाहता, अरे इसके लिए चिंता का कारण नहीं, सभी ने आश्वासन दिया। आस्थान नगर में बहुत समय तक अस्तवता छाई रही। उसके पश्चात असबीर उठ खड़े हुए, आज्ञा लेकर और आशीर्वाद देकर वे पृथ्वीसेन सहित सिंहद्वार की ओर चले जा रहे थे। आचार्य रुद्रधीर गिरवा झुकाए चिंतामग्न बैठे रहे। आचार्य को चिंतित देखकर अनुज वशिष्ठ ने निवेदन किया, आर्य शत्रु के दैत्य दैन्य स्वीकार कर लेने से युद्ध का अंत हो जाता है, यह वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा है। रुद्रधीर ने अनुज की ओर देखा, परंतु उनकी दृष्टि में संतोष न था। पृथ्वीसेन और रुद्रधीर का अंत।